मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओ ओ ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजा पिता श्री बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओ ओ सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों। मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओ जब घटा छाई तब विभूति आप जैसी धरती पे आई, एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओ ओ ओ ओ।
ओम शांति, ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। और आज 1 जनवरी 2026 आ चुकी है, तो नव वर्ष और नव युग की बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हम तो देख रहे थे सुबह सुबह से कितने भाई बहन आ गए नीचे से, भाग भाग करके आ गए नीचे से, अभी भी आ रहे हैं। और कुर्सियां तो लगभग भर गई है पूरी, अभी भी देखो दौड़ के आ रहे हैं, तो नीचे से आ गए। और बाबा भी बच्चों को आज यही कह रहे हैं, बच्चे आओ मधुबन आओ, आकर के रिफ्रेश हो जाओ, आकर के विश्राम प्राप्त करो। बाबा पत्रों में भी यही लिखते थे, आओ बच्चे मधुबन में आकर के विश्राम भी पाओ और रिफ्रेश भी हो जाओ। क्योंकि मधुबन में आते हैं तो यहाँ पर तो न खाना पकाना, न दफ्तर जाना, कुछ नहीं, पर बाबा 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 की बातें सुनते हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं, बाबा से ही अपना प्यार जताते हैं, बाबा का प्यार इतना मिलता है। तो इसीलिए इस नव वर्ष में भी आप सबको बहुत बहुत बधाई के साथ साथ शुभकामनाएं कि ये सारा वर्ष खुशियों भरा वर्ष हो। और ये 2026 का वर्ष, अभी कुछ दिन पहले एक जूम पर मीटिंग हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि ये 2026 माना 90 साल शुरू हो रही है, ये 90th ईयर शुरू हो रहा है इस यज्ञ का। 1936 में ये यज्ञ आरंभ हुआ और अभी 2026, तो 90 साल। तो इन 90 इस साल में क्या क्या सेवाएं होनी है, सब 90 90 90 90 करना है, बहुत कुछ करना है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा इस साल का। तो उसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई हो, आज 90 साल शुरू हो रहा है इस संस्था का, इस यज्ञ का। तो आज बाबा ने मुरली में भी यही कहा है, बच्चे आओ मधुबन, आओ मधुबन और रिफ्रेश हो जाओ। अभी और भी आते जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो भी पार्टियों में आ रहे हैं, ऊपर नीचे से ऊपर आ रहे हैं, आप सबके नाश्ते, दिन का भोजन, रात का भोजन सब ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में वहीं जाकर के करेंगे, क्योंकि नीचे भी और भी बहुत कुछ होता है, इसीलिए ऊपर ही जाएंगे। मैं देख रही हूँ धीरे धीरे वही कुर्सियाँ हटा रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है बैठने की, धीरे से हटाएंगे, आवाज नहीं करेंगे। प्लीज आवाज नहीं करें, एकदम धीरे से हटाएं क्योंकि इतनी कुर्सियाँ नहीं रखी है। इस हॉल का भी रिनोवेशन होना है, धीरे धीरे हो रहा है, तो इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे सुबह सुबह नीचे से आ जाएंगे। तो फिर भी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज बाबा ने सबसे पहले यही कहा है, बच्चे मधुबन में आते हो रिफ्रेश होने और विश्राम पाने। विश्राम कैसे पाते हैं? बिल्कुल साइलेंस में चले जाते हैं, ये विश्राम है। संतों के लिए कभी नहीं कहते वो सो गया, कहते वो विश्राम में है। तो विश्राम का मतलब है कि बिल्कुल शांत। और ये जनवरी का महीना ब्रह्मा बाबा की स्मृति का महीना है, तो ये इस महीने में जितना हो सके मौन में रहे, यही आप सबसे निवेदन रहेगा। या पांडव भवन में भी चारों ओर एक वो लगा देते हैं पट्टी कि ये जनवरी का महीना सभी शांति में रहे। तो जब मधु बनाते हैं तो कृपया शांति बनाए रखें, आवाज बिल्कुल नहीं करेंगे और इसी शांति के वातावरण में ही मौन में रह करके ही मधुबन के वातावरण को और शक्तिशाली बनाएंगे। यही हमारी आप सबसे निवेदन है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 1/1/26 है और कल तो आपने अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुने, 2006 की मुरली थी 31 दिसंबर की, जिसका सारांश था कि नए वर्ष की नवीनता क्या लानी है। नए वर्ष की नवीनता दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति से, दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति से क्या करो, कारण व समस्या शब्द को विदाई दे दो। कारण और समस्या शब्द को विदाई देकर निवारण व समाधान स्वरूप बनो। न कोई कारण बताकर बहाने देना है, न ही कोई समस्या होनी चाहिए। समस्या को समाधान ही सोचो और साथ साथ कारण का निवारण सोचो। तो अभी हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज 1/1/26 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने। बाप और वर्षे को याद करो तो सदा रिफ्रेश रहेंगे। कैसे रहेंगे रिफ्रेश, जब बाबा की याद में रहेंगे तो रिफ्रेश रहेंगे। रिफ्रेश करते ना, कंप्यूटर में भी बहुत बहुत कोई फाइल्स होते हैं, बहुत इकट्ठे हो गए, तभी उसको व्यवस्थित करना है तो फिर क्या करते हैं, रिफ्रेश का बटन दबा देते हैं। तो रिफ्रेश होने से वो सब व्यवस्थित हो जाता है। तो बाबा भी कहते हैं कि आकर के यहाँ रिफ्रेश हो जाओ, पुरानी बातें व्यर्थ बातें ये सब खत्म। तो मधुबन में आते इसीलिए विश्राम भी पाओ और आकर के रिफ्रेश भी हो जाओ। तो मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने। बाप और वर्षे को याद करो तो सदा रिफ्रेश रहेंगे। प्रश्न है, आज बाबा ने बहुत प्यार से बच्चों को बुद्धू भी कहा है। बुद्धू बच्चे कौन से है? बाबा ने कहा है कि जो बच्चे बाबा की सेवा नहीं करते, बाबा का परिचय औरों को नहीं देते, तो बाबा उनको टाइटल देते बुद्धू बच्चा। अब बुद्धू तो नहीं बनना है ना, बाबा की सेवा हमें खूब करनी है, बाबा का नाम प्रत्यक्ष करना है। तो प्रश्न है, समझदार बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? बुद्धू नहीं बनना है, समझदार बनना है। तो समझदार बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है, जो समझदार है उन्हें अपार खुशी होगी। पहली बात तो ये, कभी भी वो दुख का अनुभव नहीं करेंगे जो बाबा के समझदार बच्चे हैं। जो समझदार हैं उन्हें अपार खुशी होगी। अगर खुशी नहीं है तो भी बाबा कहेंगे बुद्धू है, सुना? अगर खुशी नहीं है तो भी बाबा कहेंगे बुद्धू है। इतना बाबा ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं, इतनी ऊंची शिक्षाएं दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं बाबा बच्चों को, फिर भी खुशी नहीं है तो क्या कहेंगे, बुद्धू कहेंगे। हाँ, ये भी बड़ा प्यार का शब्द है। और हमारी मीठी दीदी जी थी, तो दीदी जी फिर बाबा भी कहते थे, एक शब्द यूज करते थे, मुट्ठी। मुट्ठी, हाँ मुट्ठी माना प्यार का ही शब्द है कि बुद्धू, लेकिन वो प्यार से मुट्ठी कहते थे। तो जो समझदार है उन्हें तो अपार खुशी होगी, अगर खुशी नहीं तो बुद्धू है। समझदार अर्थात, अब समझदार किसको कहेंगे, समझदार अर्थात पारस बुद्धि बनने वाले और दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाने वाले। न खुद बनते न दूसरों को पारस बुद्धि बनाएंगे तो बाबा कहेंगे बुद्धू। तो रूहानी सर्विस में वो बिजी रहेंगे, बाप का परिचय देने बिगर रह नहीं सकेंगे। अब ये ध्यान रखना, अगर बाप का परिचय नहीं दे रहे हैं या खुशी में नहीं रह रहे हैं, माना बाबा का टाइटल मिल गया बुद्धू, बुद्धू नहीं बनना। ओम शांति। तो बाप बैठ समझाते हैं, ये दादा भी समझते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा मुख से सुनाते हैं तो ब्रह्मा बाबा भी सुनते हैं, ये दादा भी समझते हैं, क्योंकि बाप बैठ दादा द्वारा समझाते हैं। तुम जैसे समझते हो वैसे दादा भी समझते हैं, साथ साथ समझते हैं। दादा को भगवान तो नहीं कहा जाता, यानी ब्रह्मा बाबा को भगवान तो नहीं कहा जाता, ये है भगवानुवाच। बाप मुख्य क्या समझाते हैं कि बच्चे देही अभिमानी बनो। ये क्यों कहते हैं बाबा, क्यों बाबा हर मुरली में हमें कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, क्योंकि अपने को आत्मा समझने से हम पतित पावन परम पिता परमात्मा से पावन बनने वाले हैं। तो आत्मा समझने बिगर बाबा की याद भी नहीं रहेगी तो न पतित से पावन बनेंगे। तो बाबा कहते, क्यों बाबा कहते देही अभिमानी बनो, क्योंकि अपने को आत्मा समझने से हम पतित पावन परम पिता परमात्मा से पावन बनने वाले हैं। ये बुद्धि में ज्ञान है, तो सबको समझाना है। पुकारते भी हैं कि हम पतित हैं, अब पुकारते हैं एक तरफ हम पतित हैं, नई दुनिया तो पावन जरूर ही होगी। नई दुनिया बनाने वाला स्थापन करने वाला तो बाप है, उनको ही पतित पावन बाबा कह बुलाते हैं। पतित पावन फिर साथ में उनको बाप भी कहते हैं। बाप को आत्माएं बुलाती है। अब ये कौन बुलाता है बाप को, कौन बुलाता है, शरीर नहीं बुलाएंगे, शरीर थोड़ी बुलाएंगे परमात्मा को। शरीर का संबंध तो प्रकृति से है, लेकिन आत्मा का संबंध परमात्मा से है, तो आत्मा ही बाप को बुलाती है, शरीर नहीं बुलाएगा। हमारी आत्मा का बाप पारलौकिक है, वही पतित पावन है। ये तो अच्छी रीति याद रहना चाहिए। ये नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है, ये समझ तो सकते हैं ना, सब समझ सकते हैं कि ये पुरानी दुनिया है या नई दुनिया है। तो ऐसे भी बुद्धू हैं। अब ये दूसरे प्रकार के बुद्धू दुनिया में, बुद्धू एक तो बाबा ने बच्चों को कहा बुद्धू, क्योंकि समझते नहीं समझाते नहीं तो आप खुशी में नहीं रहते तो बुद्धू है। पर अभी दुनिया वाले बुद्धू कैसे, बाबा कहते ऐसे भी बुद्धू है जो समझते हैं हमको तो सुख अपार है, बहुत धन है, बहुत मिल्कियत है, बहुत गाड़ियां है, नाम मान शान है, हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। तो वो समझते हैं हमको सुख अपार है, हम तो जैसे स्वर्ग में बैठे हैं। परंतु ये भी समझना चाहिए कि कलयुग को कभी स्वर्ग नहीं कह सकते, कलयुग को कभी स्वर्ग नहीं कह सकते। नाम ही है कलयुग, पुरानी पतित दुनिया, अंतर है ना। मनुष्यों की बुद्धि में ये भी नहीं बैठता है बिल्कुल ही, बुद्धू तो है ये, साथ साथ और क्या है, बुद्धि कैसी है, बिल्कुल ही जर्जरी भूत अवस्था है। अब जर्जरी भूत अवस्था किसकी होती, उसको समझ में भी कैसे आएगा। बच्चे नहीं पढ़ते हैं, लौकिक में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बच्चे, तो पिता कहेगा ना, तुम तो पत्थर बुद्धि हो, क्यों नहीं पढ़ पाते हो। तो बाबा भी लिखते हैं, किसी ने बाबा को पत्र लिखा होगा कि बाबा हमारे गांव में लोग समझते नहीं है, सेवा नहीं करते हैं, बच्चे आते तो हैं क्लास में परंतु सेवा नहीं करते। तो बाबा ने उसको लिखा, बाबा भी लिखते हैं, तुम्हारे गांव निवासी तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, क्यों नहीं समझते हैं, क्यों नहीं समझाते हैं। समझते नहीं है क्योंकि दूसरों को समझाते नहीं है। अगर दूसरों को समझाए माना समझदार है, अब दूसरों को नहीं समझा सकते हैं माना खुद भी नहीं समझाए। समझते नहीं है क्योंकि दूसरों को समझाते नहीं है। खुद पारस बुद्धि बनते हैं तो दूसरों को भी बनाना चाहिए ना, पुरुषार्थ करना चाहिए, इसमें लज्जा आदि की तो बात ही नहीं है। परंतु मनुष्यों की बुद्धि में आधा कल्प उल्टे अक्षर पड़े हैं, वो भूलते नहीं हैं। कैसे भुलाएं? भुलाने की ताकत भी तो एक बाप के पास है ना। पुरानी बातें भुलाने की ताकत भी बाबा कहते एक बाप के पास है। यह बाप बिगर ये ज्ञान तो कोई दे नहीं सकते हैं, गोया सब अज्ञानी ठहरे। ये भी है, केवल बाप ही ये ज्ञान दे सकते हैं, तो गोया ये ज्ञान अगर नहीं है तो अज्ञानी ठहरे। उनका ज्ञान फिर कहाँ से आया? जब तक ज्ञान सागर बाप आकर न सुनाए, तमो प्रधान माना ही अज्ञानी दुनिया, तमो प्रधान दुनिया माना अज्ञानी दुनिया, सतो प्रधान माना दैवी दुनिया, फर्क तो है ना। देवी देवताएं ही पुनर्जन्म लेती हैं, समय भी फिरता रहता है, बुद्धि भी कमजोर होती जाती है। बुद्धि का योग लगाने से जो ताकत मिले वो फिर खलास हो जाती है। कलयुग में तो यही हाल है, सहन शक्ति भी खत्म हो गई है। किसी को कुछ कहो तो सही, ऐसे बिगड़ जाएगा जैसे कि पता नहीं क्या कह दिया। तो बाबा कहते सहन शक्ति भी खत्म हो जाती है। अभी तुमको बाप समझाते हैं, तुम कितने रिफ्रेश होते हो, मधुबन में आके कितने रिफ्रेश होते हो। तुम रिफ्रेश थे और विश्राम में थे, परम धाम में आत्मा तो एकदम विश्राम में थी। बाप भी लिखते हैं ना, बच्चों आकर के रिफ्रेश भी हो जाओ और विश्राम भी पाओ। बाबा ऐसे पत्रों में लिखते थे, बच्चों को खास निमंत्रण देते थे मधुबन आने के लिए। तो बच्चों आकर के रिफ्रेश भी हो जाओ और विश्राम भी पाओ। रिफ्रेश होने के बाद तुम सतयुग में विश्रामपुरी में जाते हो। अब यहाँ भी मधुबन में रिफ्रेश होते, फिर परम धाम जाएंगे तो जैसे आत्मा रिफ्रेश हो गई, सब कुछ नया हो गया। तो फिर बाबा कहते हैं तो बाबा कहते हैं रिफ्रेश होने के बाद, यानी परम धाम में रिफ्रेश होने के बाद तुम सतयुग में भी विश्रामपुरी में जाते हो। वहां भी विश्राम ही विश्राम है सतयुग में। वहां तुमको बहुत विश्राम मिलता है, वहां सुख शांति संपत्ति आदि सब कुछ तुमको मिलता है। तो बाबा के पास आते हैं रिफ्रेश होने, विश्राम पाने। रिफ्रेश भी शिव बाबा करते हैं और विश्राम भी बाबा के पास लेते हैं। विश्राम माना शांत, विश्राम माना शांत। थक कर विश्रामी होते हैं ना, तो नींद शब्द नहीं कहते हैं, विश्राम माना शांत। कोई कहाँ जाते हैं विश्राम पाने, जाते ना हॉलीडे पर जाते हैं, छुट्टियां मनाने आते हैं। यहाँ भी माउंट आबू में भी कितने आ गए हैं, सारा माउंट आबू हाउसफुल हो गया है ना, खास करके ये वेकेशंस है अभी, तो बच्चों को भी ले आते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ कोई कहाँ जाते विश्राम पाने। अब उसमें तो रिफ्रेशमेंट की बात ही नहीं है, खर्चा ही खर्चा है ना, क्या रिफ्रेशमेंट होगी। यहाँ तो तुमको बाप रोज समझाते हैं, तो यहाँ आकर के रिफ्रेश होते हैं। याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, सतो प्रधान बनने के लिए तुम यहाँ आते हो। मधुवन क्यों आते हो? सतो प्रधान बनने के लिए। उसके लिए क्या पुरुषार्थ है? तो मीठे मीठे बच्चे, बाप को याद करो। बाप ने सारी शिक्षा तो दे दी है, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, तुमको विश्राम कैसे मिलता है, और कोई भी ये बातें नहीं जानते तो उनको भी समझाना चाहिए, ताकि वो भी तुम जैसा रिफ्रेश हो जाए। अपना फर्ज तो यही है ना, हम सब ब्राह्मणों का यही फर्ज है, दूसरों को भी समझाना है। अपना फर्ज ही ये है, सबको पैगाम देना, अविनाशी रिफ्रेश होना है, अविनाशी रिफ्रेश होना है। ऐसे नहीं एक दिन रिफ्रेश हो गए फिर दूसरे दिन फिर मूंज गए। अविनाशी रिफ्रेश होना है, अविनाशी विश्राम पाना है। सबको ये पैगाम दो, यही याद दिलाना है कि बाप को और वर्षे को याद करो। है तो वह सहज बात, बेहद का बाप स्वर्ग रचते हैं, स्वर्ग का ही वर्षा देते हैं। अभी तुम हो संगम युग पर, माया के श्राप और बाप के वर्षे को तुम जानते हो। बाबा कहते हैं सब अभी माया से श्रापित है, इसलिए दुखी अशांत है, और बाप आके वर्षा देते हैं सुख शांति का। तो माया के श्राप और बाप के वर्षे को तुम जानते हो। जब माया रावण का श्राप मिलता है तो क्या होता है? जब माया रावण का श्राप मिलता है तो पवित्रता भी खत्म, सुख शांति भी खत्म, तो धन भी खत्म, सब खत्म। कैसे धीरे धीरे खत्म होता जाता है ये भी बाप ने समझाया है। कितने जन्म लगते हैं, कितने जन्म लगते हैं सब खत्म होने में, कितने जन्म लगते हैं। दुख धाम में कोई विश्राम थोड़ी होता है, सुख धाम में तो विश्राम ही विश्राम है। मनुष्यों को भक्ति कितना थकाती है, दुख धाम में फिर भक्ति भी बहुत है और वो भक्ति तो कितना थकाती है। जन्म जन्मांतर भक्ति थका देती है, कंगाल कर देती है। ये भी अभी तुमको बाप ने समझाया है। नए नए आते हैं तो कितना समझाया जाता है। हर एक बात पर मनुष्य बहुत सोच करते हैं, समझते हैं। हाँ, यहाँ आने में उनको डर लगता है, क्योंकि सुनते तो है परंतु फिर सोचते, उनको कहते आओ सेंटर पर तो उनको डर लगता है। क्यों? क्योंकि समझते कहीं जादू ना हो जाए, कहीं जादू ना लग जाए, समझते कहा जादू ना हो। अरे हाँ, बाबा कहते हैं तुम तो कहते ही हो भगवान को जादूगर है। तो मैं भी कहता हूँ हाँ बरोबर मैं जादूगर हूँ। क्या जादू करते हैं भगवान? बरोबर मैं जादू करता हूँ, परंतु जादू कोई वो नहीं है जो भेड़ बकरी बना दूंगा, वो जादू नहीं करता हूँ। क्योंकि वो जो सम्मोहन करते हैं ना, तो उसने यही बताया, तुम समझो मैं भेड़ हूँ, मैं भैंस हूँ। भैंस होता थोड़ी है, लेकिन वो सम्मोहित होता है तो उसको ये लगता है। परंतु बाबा तो ऐसे जादू नहीं करते जो भेड़ बकरी बना देंगे, जानवर तो नहीं है ना। तो ये बुद्धि से समझा जाता है। अब ये बुद्धि की बात है, जादू कौन सा? क्योंकि दुनिया में देखो बाबा क्या कहते हैं, गायन है सुर मंडल के साज से, सांडा माना जो भेड़ होती है ना, तो भेड़ सुर मंडल के साज से, सांडा क्या जाने, सांड वो सिंधी भाषा में भेड़ को कहते हैं। जैन जी बोली बे, तो अभी वो भेड़ की जो बोली होती है ना, तो भेड़ की बोली क्या होती है? बे मैं। आप उनको कितना भी सुंदर संगीत सुनाओ तो वो जवाब में क्या कहेंगे? बे। तो सुर मंडल के साज को क्या जान, भेड़ क्या जाने जिसकी बोली बे। तो बाबा कहते हैं इस समय मनुष्य जैसे रिड मिसल है, रिड 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 माना वो भेड़, तो भेड़ और बकरी ना, तो भेड़ को रिड कहते हैं। तो सुर मंडल के साज को रिड क्या जाने जिसकी बोली बे। तो इस समय मनुष्य जैसे रिड मिसल है, भेड़ मिसल है। ये बातें यहाँ के लिए है, सतयुग में नहीं गाएंगे, ये इस समय का ही गायन है। अब इस समय बाबा कहते हैं चंडिका का भी कितना मेला लगता है। चंडिका बाबा उनको कहते थे है ना, कौन जो बाबा के बनते हैं फिर बाबा को छोड़ के चले जाते हैं। और चंडी वैसे ये सिंधी भाषा में बहुत बुरा शब्द है, बहुत बुरा शब्द है। ये तो जैसे चंडी है उसको ऐसे दिखाएंगे, चंडी है माना ये तो बहुत बुरी है। तो बाबा कहते हैं चंडिका का तो कितना बड़ा मेला लगता है, देवी है ये चंडीगढ़ जो नाम पड़ा है वो चंडिका देवी से ही पड़ा है ना, चंडिका वहाँ देवी होगी चंडिका, तो उसके नाम पर चंडीगढ़ पड़ा है। मुंबई का नाम मुंबरा देवी, मुंबा नाम अम्मा अम्बा का ही ये नाम है तो मुंबई नाम पड़ा। तो देवियों के नाम पर भी कई शहरों के नाम है तो चंडिका देवी। तो चंडिका का कितना मेला लगता है, पूछो वो कौन थी तो कहेंगे देवी थी। अब ऐसा नाम तो वह होता नहीं, सतयुग में ऐसा नाम नहीं होता है। सतयुग में तो सदैव शुभ नाम होते हैं, श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, हाँ ऐसे नाम होते हैं। श्री कहा जाता है श्रेष्ठ को, सतयुगी संप्रदाय को श्रेष्ठ कहा जाता है, कलयुगी विश्व संप्रदाय को श्रेष्ठ कैसे कहेंगे। श्री माना श्रेष्ठ, अभी के मनुष्य तो श्रेष्ठ है नहीं, गायन भी है मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। फिर देवता से मनुष्य बनते हैं क्योंकि पांच विकारों में जाते हैं। रावण राज्य में सब मनुष्य ही मनुष्य हैं, वहां है देवताएं, उनको डीटी वर्ल्ड और इसको ह्यूमन वर्ल्ड कहा जाता है, इसको ह्यूमन वर्ल्ड कहा जाता है। डीटी वर्ल्ड को दिन कहा जाता है, ह्यूमन वर्ल्ड को रात कहा जाता है। दिन सोजरे को कहा जाता है और रात अज्ञान अंधियारे को कहा जाता है। इस फर्क को तुम जानते हो, तुम समझते हो, हम पहले कुछ भी नहीं जानते थे, अभी सब बातें बुद्धि में है। ऋषि मुनियों से पूछते हैं रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो वो भी नेति नेति करके गए। वेदों में तो यही लिखा है ईश्वर का अंत पाना असंभव है, नियति नहीं अंत नहीं अंत, हम नहीं जानते। अभी तुम समझते हो हम ही पहले नास्तिक थे, बेहद के बाप को नहीं जानते थे, वो है असुल अविनाशी बाबा, आत्माओं का बाबा। तुम बच्चे जानते हो हम उस बेहद के बाप के बने हैं, तो कभी हम उस बेहद के बाप के बने हैं जो जो कभी जलते नहीं है। यहाँ तो सब जलते हैं, हाँ किसी का बुत बना करके भी उनको जलाते हैं और रावण को भी सब जलाते हैं। तो जैसे जलाने का ईर्ष्या में भी मनुष्य जलता है, दुख में भी जलता है, न जाने सब में जलते हैं। तो यहाँ तो जलते हैं, रावण को भी जलाते हैं, शरीर है ना, फिर भी आत्मा को तो कोई जला न सके। कितना भी किसी से गुस्सा हो उसका बुत बना करके उसको जलाई भी, लेकिन आत्मा को तो कोई जला नहीं सकता है। तो बच्चों को बाप का ये गुप्त ज्ञान सुनाते हैं, बच्चों को बाप ये गुप्त ज्ञान सुनाते हैं जो बाप के पास ही है। यह आत्मा में गुप्त ज्ञान है, आत्मा भी गुप्त है, आत्मा इस मुख द्वारा बोलती है, इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, आत्मा अभिमानी बनो, नहीं तो अब आत्मा अभिमानी नहीं बनेंगे तो क्या होगा, नहीं तो जैसे उल्टे बन जाते हो, आत्माभिमानी नहीं तो बाबा कहते उल्टे हैं, देह अभिमान माना जैसे उल्टे हैं। अपने को आत्मा भूल जाते हो। ड्रामा के रास को भी अच्छी रीति समझना है। ड्रामा में जो नूद है वो हू बहू रिपीट होता है, ये किसको पता नहीं है। ड्रामा अनुसार सेकंड बाय सेकंड कैसे चलता रहता है ये भी नॉलेज बुद्धि में है। आसमान का कोई भी पार पा नहीं सकते हैं, धरती पर पा सकते हैं। आकाश तो सूक्ष्म है ना, पोलारी पोलार आप जाएंगे स्पेस में जाते हैं तो कहाँ अंत पा सकते हैं स्पेस का। आकाश सूक्ष्म है, धरती तो स्थूल है, कई चीजों का पार नहीं पा सकते हैं। हाँ, उस समय ये शुरू हुआ था 1968 में स्पेस में जाना, फिर यही सोचा था चंद्रमा में जाएंगे, वहाँ ये वहाँ पर पहुंचेंगे, तो इसीलिए स्पेस में जाते थे। तो बाबा कहते हैं कई चीजों का पार नहीं पा सकते हैं, जबकि कहते भी हैं आकाश ही आकाश, पाताल ही पाताल। अब शास्त्रों में सुना है ना, तो ऊपर में भी जाकर के देखते हैं, वहां भी दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। पहले तो यही एक रेस थी चंद्रमा पर प्लॉट खरीदना है, तो वहां भी दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। दुनिया बसाई तो बहुत है ना, ये धरती कोई कम बसाई है क्या? सब जगह देखो मकान बनते जा रहे हैं, मकान बनते जा रहे हैं, ये दुनिया भी कम बसाई है क्या? भारत में सिर्फ एक ही देवी देवता धर्म था और खंड आदि तो थे ही नहीं, फिर कितना बसाया है। कितना बसाया है तुम विचार करो, भारत के भी कितने थोड़े टुकड़े में देवताएं होंगे, थोड़े टुकड़े में देवताएं होंगे भारत के भी सतयुग में, थोड़े टुकड़े में देवताएं होते हैं। जमुना का कंठा होता है, नदियों के किनारे ही शहर बसे हुए, जहां भी जाओ दुनिया में जो बड़े बड़े शहर है वो सब नदियों के किनारे पहले बसे, फिर वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तो भारत में भी तो पहले ये हमारी नदियों के ही किनारे सब शहर होंगे ना। तो बाबा कहते हैं भारत के ही कितने थोड़े टुकड़े में देवताएं होते हैं। जमुना का कंठा होता है, दिल्ली परिस्थान थी, इसको कब्रिस्तान कहा जाता है। कहां परिस्थान से कब्रिस्तान बन गया, जहां अकाली मृत्यु होती है। अकाली मृत्यु का मतलब ये जैसे कब्रिस्तान, कब मौत आ जाए पता ही नहीं। जहां अकाली मृत्यु होती रहती है, अमर लोक को परिस्थान कहा जाता है। वहां बहुत नेचुरल ब्यूटी है, कितनी सुंदरता होगी सतयुग में, नेचुरल ब्यूटी है। भारत को वास्तव में परिस्थान कहते हैं, ये लक्ष्मी नारायण परिस्थान के मालिक थे। कितने शोभावान थे, लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते ही कितना दिल खुश हो जाता है ना, कितने शोभावान थे। सतो प्रधान है ना, नेचुरल ब्यूटी थी देवताओं की। आत्मा भी चमकती रहती है, केवल शरीर की ब्यूटी नहीं, आत्मा भी चमकती रहती है। बच्चों को दिखाया था कि श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है, यज्ञ में ये बहुत साक्षात्कार हुए कि श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है। सारे कमरे में ही जैसे चमत्कार हो जाता है, लाइट ही लाइट हो जाती है श्री कृष्ण का जन्म होते ही। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, अभी तुम परिस्थान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, नंबर वार तो जरूर चाहिए, चाहिए नंबर वार, सब एक जैसा तो पुरुषार्थ नहीं करते, एक जैसे सब तो हो भी न सके। तो विचार किया जाता है इतनी छोटी आत्मा कितना बड़ा पाठ बजाती है। शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर का क्या हाल हो जाता है, वो भाव वो इमोशंस जो चेतन मनुष्य के चेहरे पर होते हैं वो डेड बॉडी में तो नहीं होंगे ना, क्योंकि आत्मा है ही नहीं। तो शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर का क्या हाल हो जाता है। सारी दुनिया के एक्टर्स वही पार्ट बजाते हैं जो अनादि बना हुआ है। ये सृष्टि भी अनादि है, उसमें हर एक का पार्ट भी अनादि है। उनको तुम वंडरफुल तब कहते हो, कैसे कहते हो वंडरफुल, सबका पार्ट अपना अपना, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। तुमको तुम वंडरफुल तब कहते हो जबकि जानते हो यह सृष्टि रूपी एक झाड़ है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं ड्रामा में, फिर भी जिसके लिए जितना समय है उतना समझने में समय लेते हैं। कल्प पहले जितना समझा था उतना ही समझेंगे इस कल्प में भी, उतना समझने में समय लेते हैं। तो बुद्धि में तो फर्क है ना, हर एक की समझ अपनी अपनी, बुद्धि भी अपनी अपनी। बुद्धि में फर्क है ना, आत्मा मन बुद्धि सहित है ना, तो कितना फर्क रहता है। हर आत्मा अलग अलग है, हर एक की मन बुद्धि अपने रूप अपने रंग की है। तो मन बुद्धि सहित है ना आत्मा, तो कितना फर्क रहता है। बच्चों को मालूम पड़ता है हमको स्कॉलरशिप लेने की है, तो दिल अंदर खुशी होती है ना। लौकिक में भी होता है ना, स्कॉलरशिप लेनी है, और जब स्कॉलरशिप मिलती है तो कितनी खुशी होती है, तो दिल अंदर खुशी होती है ना। यहाँ भी अंदर आने से ही एब ऑब्जेक्ट सामने देखने में आती है तो जरूर खुशी होगी ना। हिस्ट्री हॉल में प्रवेश करते ही लक्ष्मी नारायण का कितना सुंदर ट्रांसलाइट है, उसको देखने से कितनी खुशी होती है। अभी तुम जानते हो ये बनने के लिए यहाँ आए हैं पढ़ने। हम सब यहाँ क्यों आए हैं पढ़ने? हाँ, लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए, नहीं तो कभी कोई आ न सके। ये है एम ऑब्जेक्ट। ऐसा कोई स्कूल कहाँ भी नहीं होगा जहाँ दूसरे जन्म के एम ऑब्जेक्ट को देख सके। उन स्कूलों में तो उसी जन्म के एम ऑब्जेक्ट है ना, मुझे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, वकील बनना। और यहाँ हम कौन सी एम ऑब्जेक्ट देखते हैं, दूसरे जन्म में क्या बनेंगे। तो देखो बाबा कहते हैं ऐसा कोई स्कूल कहाँ भी नहीं होगा जहाँ दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट भी देख सके। तुम देख रहे हो ये स्वर्ग के मालिक थे, हम ही ये बनने वाले हैं, ये कोई और नहीं थे, हम ही ये बनने वाले हैं। हम अभी संगम युग पर हैं, न उस राजाई के हैं न इस राजाई के हैं, संगम पर है, न सतयुग में है न कलयुग में है। तो न उस राजाई के हैं न इस राजाई के हैं, हम बीच में हैं, जा रहे हैं हम। कई बार होता ना, हम आबू रोड से माउंट आबू जाते हैं, अभी आधे रास्ते में हैं, अब कोई बात कर रहे हैं टेलीफोन पर अचानक कट जाता है क्योंकि वहाँ टावर नहीं है। अब बीच में आ गए तो न हम नीचे का कुछ सुन सकते हैं न ऊपर का, बस बीच में है जब तक फिर टावर आए जो हम बात भी कर सके। तो अभी भी बाबा कहते हैं ना, तुम कलयुग में और सतयुग में बीच में हो। तो बाबा कहते हैं हम बीच में हैं और जा रहे हैं। कई बार फोन करते हैं, भाई तुम अगर नीचे हो तो हमसे मिलना। हम कहते हैं भाई हम तो बीच में, हम तो ना आबू रोड है ना माउंट आबू है, हम तो बीच में हैं, अभी कैसे आपसे मिलेंगे। तो बस वहां से दूर हो गए, ऊपर जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं खिवैया बाप भी निराकार है, बोट यानी आत्मा भी है निराकार। आत्मा बोट है, नाव है, और बाबा खिवैया है, हम सब आत्माओं को ले जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बोट ये नाव भी आत्मा ही है, वो निराकार है। तो बोट को खींच कर परमधाम में ले जाते हैं। कैसे बाबा ले जाते हैं हमें परमधाम? इस बोट को, आत्मा को खींचकर परमधाम में ले जाते हैं। इनकॉर्पोरियल बाप इनकॉर्पोरियल बच्चों को ले जाते हैं। निराकार बाप निराकार आत्माओं को ले जाते हैं। तो बाप ही बच्चों को साथ में ले जाएंगे ना, ना? पिता ही बच्चे का हाथ पकड़ के उनको ले जाएगा ना। ये चक्र पूरा होता है फिर हूबहू रिपीट करना है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, छोटा बनकर फिर बड़ा बनेंगे। अब दूसरा शरीर लिया, अब छोड़ा आत्मा ने शरीर, तो बूढ़ा शरीर होगा या कुछ भी, लेकिन जब नया शरीर लेंगे वो तो बच्ची का ही लेंगे ना। तो बाबा कहते हैं छोटा बनकर फिर बड़ा बनेंगे, जैसे आम की गुठली को जमीन में डाल देते हैं तो उनसे फिर आम निकल आएंगे। बीज तो कितना छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा होता है, वो है हद का झाड़। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इनको वैरायटी झाड़ कहा जाता है। सत्युग से लेकर कलयुग तक सब पाठ बजाते रहते हैं। अविनाशी आत्मा 84 के चक्र का पाठ बजाती है। लक्ष्मी नारायण थे जो अब नहीं हैं, चक्र लगाए अब फिर ये बनते हैं। कहेंगे पहले ये लक्ष्मी नारायण थे, फिर इनों का ये लास्ट जन्म, लक्ष्मी नारायण की आत्मा का लास्ट जन्म, आखिरी जन्म ये ब्रह्मा सरस्वती है। अभी सबको वापिस जरूर जाना है। स्वर्ग में तो इतने लोग थे ही नहीं, अभी जो जनसंख्या है दुनिया की, सतयुग में तो इतने लोग थे ही नहीं, न इस्लामी थे न बोधी थे न क्रिश्चियन से, हाँ ये सब बाद में आए हैं, द्वापर युग शुरू हुआ तब से, तो न इस्लामी न बोधी न क्रिश्चियन, कोई भी धर्म वाले एक्टर्स नहीं थे। सिर्फ एक ही धर्म था सतयुग में, कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो सिवाय देवताओं के और कोई धर्म नहीं था सतयुग में। अब ये समझ भी कोई में नहीं है। समझदार को टाइटल मिलना चाहिए ना, जो समझदार होते हैं उनको कोई ना कोई टाइटल मिलता है। जितना जो पढ़ता है नंबर वार पुरुषार्थ से पद पाता है, तो तुम बच्चों को यहाँ आने से या एम ऑब्जेक्ट देख भी खुशी होनी चाहिए। मधुबन में आते हैं, बाबा कई बार कहते थे लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने बैठ जाओ, ट्रांसलाइट के सामने बैठ जाओ हिस्ट्री हॉल में, और देखो हम ये बनने वाले हैं, तो खुशी का पारा चढ़े। यहाँ आने से ये एम ऑब्जेक्ट देख खुशी होनी चाहिए, खुशी का तो पारा वार ही नहीं। कितनी खुशी हा? बाबा कहते कापारी खुशी, एकदम पैर की नाखून से लेकर सिर की चोटी तक, इतनी खुशी। खुशी का तो पारा वार नहीं। पाठशाला व स्कूल हो तो ऐसा, जहाँ बच्चों को खुशी का पारावार नहीं, ऐसा स्कूल में कितनी गुप्त परं ये हाँ बाबा कहते हैं ये कहाँ है हम है, कितनी गुप्त परंतु जबरदस्त पाठशाला हम जहाँ बैठे हैं, है गुप्त, कोई नहीं जानते हमें, लेकिन है जबरदस्त पाठशाला। जितनी बड़ी पढ़ाई है उतना बड़ा कॉलेज है, वहाँ तो सब फैसिलिटीज मिलती है। जब बड़े कॉलेजेस बड़े यूनिवर्सिटीज में तो फैसिलिटीज ही बहुत मिलती है, साधन सब मिलते हैं। अब छोटा गांव में कोई स्कूल होगा, वहाँ बैठने के लिए भी कुर्सी नहीं होगी, यहाँ पटपर ही बैठेंगे, पर बड़ी यूनिवर्सिटीज में तो बहुत सब कुछ बड़ा बड़ा होता है। तो बाबा कहते हैं जितनी बड़ी पढ़ाई उतना बड़ा कॉलेज, वहाँ तो सब फैसिलिटीज मिलती है, सब साधन मिलते हैं। आत्मा को पढ़ना है, अब बाबा कहते पढ़ना तो आत्मा को है, वो स्कूल में कॉलेज में यूनिवर्सिटी में भी पढ़ती तो आत्मा है। अब आत्मा को पढ़ना है, फिर चाहे सोने के तख्त पर बैठकर पढ़े या लकड़ी के तख्त पर बैठकर पढ़े या जमीन पर बैठकर पढ़े। गांव में तो कैसे बच्चे पढ़ते हैं, वो पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते हैं, तो कहाँ भी पढ़े तो, परंतु पढ़ना है, मुख्य लक्ष्य तो यही होता है पढ़ना है। तो बच्चों को भी देखो जगह नहीं मिलती, शुरू शुरू में तो हिस्ट्री हॉल ही था, तो वहाँ तो कुर्सी टेबल कुर्सियों की तो बात ही नहीं, सोफा वोफा कुछ भी नहीं थे जैसे अभी है वहाँ पर, वो अभी तो फोम है तो चलो नीचे बैठो तो लगता नहीं है, उस समय तो फोम भी नहीं था, दरी पर ही सब बैठते थे। हमारी दादियां भी सब नीचे बाबा के सामने बैठती थी दरी पर ही। तो बाबा कहते पढ़ना तो आत्मा को है ना, वो कोच सोफा कुर्सियां ये तो अभी निकल पड़े हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि शिव भगवानो वाच है ना, पहले नंबर में है ये विश्व का प्रिंस. कौन? विश्व का प्रिंस कौन? श्री कृष्ण. पहले नंबर में है ये विश्व का प्रिंस. तो बच्चों को अब पता पड़ा है, कल्प कल्प बाप ही आकर के अपना परिचय देते हैं. मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ. देवताओं में ये ज्ञान थोड़ी होगा. ज्ञान से तो देवता बन गए, फिर पढ़ाई की दरकार ही नहीं. इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए समझने की. अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते. धारणा के लिए मुख्य सार. पहला, इस पतित दुनिया का बुद्धि से संन्यास कर पुरानी देह और देह के संबंधों को भूल अपनी बुद्धि बाप और स्वर्ग तरफ लगानी है. दूसरा, अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए बाप और वर्षे की स्मृति में रहना है. सबको बाप का पैगाम दे रिफ्रेश करना है. रूहानी सर्विस में लज्जा नहीं करनी है. वरदान, संगठन में एक मत और एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव. संगठन में एक मत और एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव. संगठन में एक ने कहा, दूसरे ने माना, ये है सच्चे स्नेह का रेस्पॉन्ड. सच्चे स्नेह का जवाब कैसे देना होता? एक ने कहा, दूसरे ने माना. हाँ, वैसे भी कहते एक ने कहा दूसरे ने माना, ये दोनों ज्ञानी हो गए क्योंकि एक ने कहा दूसरे ने माना. ये है सच्चे स्नेह का रेस्पॉन्ड. ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं कि यहाँ देखो कितनी एकता है, कैसे एक दो को सम्मान देते हैं, कितनी एकता है, तो लोग आकर्षित होते हैं. और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं. संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है. जहाँ माया देखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है, इनकी एकता बहुत अच्छी है, माया अगर देखती है वहां मतलब वो घेराव है इनका, इनका इनकी एकता बहुत अच्छी है, तो वहां आने की हिम्मत ही नहीं रखती है माया. माया हिम्मत कब रखती है आने की? जब देखती है कि आपस में लड़ रहे हैं, तो माया हिम्मत रखती है आने की. तो बाबा कहते हैं तो वहां आने की हिम्मत ही नहीं रखती है. एक मत और एक रस स्थिति के संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं. एक मत और एक रस स्थिति के संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं. स्लोगन, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी हैं. सफल योगी किसे कहेंगे? जो कर्म और योग दोनों का बैलेंस रखे वही सफल योगी है. अभी नए वर्ष की बधाइयां बाबा ने दी है. संगम योगी सर्व तीव्र पुरुषार्थी भाई बहनों को नए युग के साथ नए वर्ष की बहुत बहुत शुभ बधाइयां, बधाइयां, बधाइयां. हाँ, फिर से ताली बजाओ. नए वर्ष का ये पहला जनवरी मास मीठे साकार बाबा की स्मृतियों का मास है. हाँ, ये भूलना नहीं. ये जनवरी का महीना मीठे ब्रह्मा बाबा की स्मृतियों का महीना है. हम सभी बाबा के बच्चे अव्यक्त वतन की सूक्ष्म लीलाओं का अनुभव करने तथा स्वयं को ब्रह्मा बाप समान संपन्न व संपूर्ण बनाने के लिए पूरा ही मास अपने बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति बनाने के लिए मन और मुख का मौन रखें। अगर मन और मुख का मौन रखेंगे इस महीने में तो बाबा कहते हैं बहुत प्राप्तियां होगी। तो मन और मुख का मौन रखें, बुद्धि बल से अव्यक्ति वतन की सैर करें। इसी लक्ष्य से इस मास के अव्यक्ति इशारे भेज रहे हैं। अब अव्यक्ति इशारे नए मास के शुरू हुए हैं, तो इस जनवरी मास का अव्यक्ति इशारा है, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अब सारा महीना इसी थीम के आधार से हमें महावाक्य मिलेंगे बाबा के। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। बाप दादा चाहते हैं मेरा एक एक बच्चा मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अधिकारी बने। अभी के अभ्यास की सतयुग में नेचुरल लाइफ होगी, लेकिन वर्षे का अधिकार अभी संगम पर है। इसलिए अगर कोई भी बंधन खींचता है तो कारण सोचो और निवारण करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। I will just quickly announce today's program. There is no morning class in Gyan Sarovar, but in the evening there is class by Sister Gopi this evening. 5 to 5:30 meditation, 5:30 to 6:30. Sister Gopi is going to revise yesterday's Avyakt Murli with everyone. And 6:30 to 7:30 will be meditation in the Harmony Hall of Om Shanti Bhavan in Gyan Sarovar. Om Shanti.
Om Shanti. पिछले वर्ष अगस्त मास में जब प्रकाशमणि दादी जी का पुण्य स्मृति दिवस मनाया गया, उसके साथ साथ इस बार बहुत विशेष एक ब्लड डोनेशन का बहुत भव्य कैंपेन चलाया गया। ये सभी को पता ही होगा, बहुत सारे लोगों ने रक्तदान किया भी था। तो ये जो कार्यक्रम चला था हमारे ब्रह्मा कुमारी की जो समाज सेवा प्रभाग सोशल विंग है उनके अंतर्गत चलाया गया था, तो उनको इस कैंपेन के चलाने पर बहुत उपलब्धि प्राप्त हुई। तो वही आपको बता रहे हैं अभी। समाज सेवा प्रभाग की ओर से दादी प्रकाशमणि जी स्मृति दिवस के तहत जो रक्तदान अभियान संचालित किया गया था उसकी सफलता को देखते हुए OMG बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अवार्ड मिला है। ये ब्रह्मा कुमारी इसके लिए बहुत बड़ी सफलता है। हम गौरवान्वित अनुभव करते हैं ऐसी सफलताओं को प्राप्त करके। तो OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आनंद श्री और श्री चंद्रशेखर सरोज जी हमारे बीच में हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप मंच पर आ जाएं, अपना स्थान ग्रहण करें, और साथ में हमारे मधुबन के सोशल विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके भाता अवतार भाई जी और हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर वीरेंद्र भाई जी, सरिता बहन और सुदेश बहन, आप सभी से निवेदन है कि आप भी यहां मंच पर आ जाएं। और अभी हम सभी को भोग अभी कार्यक्रम थोड़ा लंबा है क्योंकि आज सतगुरुवार है, प्यारे बाबा को भोग भी लगेगा और फिर बाद में सभी संदेश भी सुनेंगे बाबा का और अमृत भी सभी को मिलेगा। लेकिन उसके पहले बहुत ही संक्षिप्त में बुला लो। ये कार्यक्रम बहुत ही संक्षिप्त में चलेगा, बहुत ही शॉर्ट में हम श्री दिनेश गुप्ता जी और चंद्रशेखर सरोज जी से इसकी जानकारी सुनेंगे। और हम सभी के बीच में आदरणीय शशि बहन जी भी अभी आएंगे और वो भी हम सभी को इस सफलता पर अपनी शुभकामनाएं देंगे।
शांति। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से एडिटिकेटर के रूप में आज यहां पर आया हूं। कुछ महीने पहले एक रिकॉर्ड बना था और उस रिकॉर्ड की पूरी पुष्टि जो है मेरे ही अंडर में की गई थी, मेरी पूरी टीम साथ में थी। किसी भी रिकॉर्ड को बनाते समय दीदी पांच चीजों को हम देखते हैं, कोई भी रिकॉर्ड, दुनिया के किसी भी रिकॉर्ड में पांच चीजें देखी जाती है, अगर ये चीजें नहीं रहती तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो सबसे पहले जो आता है कि रिकॉर्ड जो है यूनिवर्सल होना चाहिए, पूरे विश्व में उसको मान्यता मिलनी चाहिए। तो ये जो रिकॉर्ड हमने जो अभी बनाया है वर्ल्ड ब्रदरहुड मैक्सिमम ब्लड डोनेशन ड्राइव 2025, ये जो रिकॉर्ड बना था ये पहले पैरामीटर में खरा उतरा था। दूसरा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते समय सेफ्टी होना चाहिए, कहीं किसी को जनहानि नहीं होनी चाहिए, और ये रिकॉर्ड भी इस पैरामीटर को भी खरा उतरा है। तीसरा जो है, रिकॉर्ड ब्रेकेबल होना चाहिए, जैसे हमने 88,378 इतने सारे यूनिट को जमा किया है, तो ये जो नंबर्स है ये ब्रेकेबल नंबर है। कल शायद मुझे लगता है ये रिकॉर्ड आप ही, क्योंकि ये रिकॉर्ड ब्रह्म कुमारी तोड़ेंगे, कोई और नहीं तोड़ेगा। ये तो मेजरेबल होना चाहिए और ब्रेकेबल होना चाहिए। चौथे नंबर पे आता है रिकॉर्ड जो है यूनिवर्सल होना चाहिए, यूनिवर्सल यानी उसको सारे यानी किसी भी कंट्री में ये ब्रेकेबल होना चाहिए। और पांचवें नंबर पे आता है रिकॉर्ड के अंदर एक मैसेज होना चाहिए। जो ब्लड है ना ये इंसान नहीं बना सकता है, बहुत सारी चीजें बना सकता है लेकिन नहीं बना सकता, इसको डोनेट ही किया जा सकता है। और ये सारी चीजों में खरे उतरते हुए ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता अनाउंसिंग दैट दिस इज द वर्ल्ड रिकॉर्ड। दीदी ये जो रिकॉर्ड बना है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, वर्ल्ड ब्रदरहुड मैक्सिमम ब्लड डोनेशन ड्राइव 2025 ब्रह्म कुमारीज माउंट आबू राजस्थान इंडिया, द सोशल सर्विस विंग ऑफ RERF ब्रह्म कुमारीज क्रिएटेड ए वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय सक्सेसफुली ऑर्गेनाइजिंग द वर्ल्ड ब्रदरहुड ब्लड डोनेशन ड्राइव 2025 अक्रॉस इंडिया एंड नेपाल फ्रॉम 22 अगस्त 2025 ऑर्गेनाइज इन दी सेक्रेट मेमोरी ऑफ राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी। दिस हिस्टोरिकल कैंपेन कलेक्टेड एंड आउटस्टैंडिंग 88,378 यूनिट्स ऑफ ब्लड यूनाइटिंग लैक्स ऑफ पीपल अंडर द इंस्पायरिंग ऑफ ब्लड डोनेशन फॉर वर्ल्ड यूनिटी एंड ब्रदरहुड। सो ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स अप्रिशिएट दिस इवेंट एज वेल एज दिस टैलेंट एंड रिकॉर्डेड इन एडिशन 2026। ये हमारे बुक के अंदर इसके बारे में ऑलरेडी रिकॉर्डेड कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है जैसे मैं हम दो दिन से यहीं पर देख रहे हैं, हाँ पेज नंबर 100 पर आया हुआ है ये ब्लड डोनेशन कैंप एट शांति वन 23 अगस्त 2025। यहां पर पूरा दिखा दीजिएगा, आप ही दिखा दीजिएगा ब्रदर जी। तो यहां पर ये पूरा का पूरा हमारा एक पेज पूरा इस पे कवर किया गया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रह्म कुमारीज एंड रियली दिस इज अ वेरी बहुत ही अच्छा नेक कार्य और लोक कल्याण। जैसे कल मैं सुन रहा था बाबा जी को, लोक कल्याण लोक हित और नव परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज एक्सेप्ट दिस रिकॉर्ड, प्लीज एक्सेप्ट दिस दीदी जी। ये रिकॉर्ड जो है ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से आप सभी इसके हकदार हैं। अवतार जी सभी के पास होता है टैलेंट, तो सभी के पास होता है, किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। आप लोग का छप गया, धन्यवाद।
ओम शांति। नए वर्ष के अंदर नई खुशखबरी कि ओएनजी की तरफ से सोशल विंग को बहुत बड़ा अवार्ड मिला है, जिसके लिए हम सबसे पहले जिन्होंने ये कार्य सफल किया और सफल कराया और जिन्होंने ओएनजी में इसको दर्ज कराया, उनके लिए दिनेश भाई और चंद्रशेखर भाई के बहुत बहुत बधाई देते हैं। और नए वर्ष की सफलता के लिए आपको सदा ही आगे बढ़ने के लिए ईश्वर विश्वविद्यालय की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ते जाएं। समाज सेवा एक हमारा बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि समाज के अंदर कई ऐसी बातें हैं, समाज को कई चीजों की जरूरत है और इस प्रकार से उनकी जरूरत और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए जो आप सेवा कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और सदा आगे बढ़ते रहें। और विशेषकर 2026 आज पहला दिन नया वर्ष का शुरुआत है, इस क्षेत्र के अंदर और भी सबको सफलता प्राप्त करते आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। शांति। अभी सभी भाई बहने बैठे रहेंगे। आज सतगुरुवार है और नया वर्ष है। नए वर्ष के लिए और आप सबको बाबा एडवांस पार्टी की दादियां और दादाओं की तरफ से और हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। नए वर्ष के अंदर सदा ब्राह्मण जीवन के अंदर आगे बढ़ते रहें और सभी ब्राह्मणों को साथ लेकर के संगठन मजबूत करते हुए और सब कुछ करते हुए आगे बढ़ते रहें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जैसा कि आपको बताया, आज वर्ष 2026 का शुभ आरंभ है। 2025 को कल रात को ही हमने विदाई दी थी। अब नए वर्ष के लिए प्यारे बाबा ने हम सबको बधाइयां भी दी और नए वर्ष के लिए आज हम सब वतन में जाएंगे, प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और आज के दिन तो सब खुशियों भरी यादों में ही बाबा की याद में बैठेंगे और बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। आज केवल एक नहीं, सभी भाई बहने जाएंगे वतन में बाबा को भोग स्वीकार कराने के लिए। जो भी जाएंगे वतन में भोग स्वीकार कराने के लिए, वो हाथ खड़ा करके बाबा को बता दें कि बाबा हम आपके पास आ रहे हैं, तो आप सभी आज वतन में बाबा के पास जाकर के भोग स्वीकार कराएंगे और फिर बाबा से मिलेंगे। उसके बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे और उसके बाद 5 लाइन में अमृत होगा, 1 लाइन होगी भाइयों की और 1 लाइन होगी डबल फॉरनेस विल स्टैंड टू दिस नेक्स्ट कैमरा साइड एंड शिलुबेन विल गिव नेक्टर टू डबल फॉरन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, दे विल कम टू दिस साइड ब्रदर्स साइड। और वर्षा बहन होगी, गोपी बहन होगी, 3 लाइनें बहनों की होंगी। और दूसरी बात हम देख रहे हैं कि आज हॉल के अंदर बहुत सुंदर शोभा लग रही है। नए वर्ष के लिए शांति मन से बहुत से भाई बहने आए हैं, जो आए हुए हाथ खड़ा करें। आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत मुबारक है, स्वागत है, स्वागत है। बाबा के घर में आना, बाबा के कमरे में बाबा से मिलन मनाना, ये भी बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बाबा भी आप सबको भरपूर कर रहे हैं। तो एक बात और बतानी है कि जो भी भाई बहने शांतिवन से आए हैं या जो अन्य भाई बहने, सबका नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में है, क्योंकि नीचे आप देखेंगे वहां पर खड़े होने की जगह नहीं है। जैसे ओम शांति भवन में आप देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा तोड़फोड़ चल रहा है, वहां भी ऐसे चल रहा है, इसलिए वहां पर खड़े होने की जगह नहीं है। किसी को भी नीचे नाश्ता नहीं करना है, चाहे टीचर्स बहने हैं चाहे पार्टी के हैं, सबको ऊपर ही नाश्ता करना है। दोपहर का भोजन भी ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में करना है। और साथ साथ जब आप बाबा के कमरे में जाते हैं तो बाबा के कमरे में माताएं विशेष ध्यान रखें। बाबा के कमरे में छोटी छोटी कोई चीज नहीं रखनी। बाबा तो हमारा है, बाबा हमें देने वाला है, हम वहां पर क्यों बाबा को दें? तो इसे बाबा के कमरे कोई भी चीज किसी को नहीं रखना है, इस बात का भी सबको ध्यान देना है। अभी हम सब चलते हैं वतन की ओर, बाबा के पास। बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे, भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे, और उसके बाद पांच लाइन में अमृत होगा, एक लाइन भाइयों की, वन लाइन फॉर डबल फॉरन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स एंड सम टीचर्स, और बाकी तीन लाइनें होंगी अन्य बहनों की। ओम शांति। गोपी बहन अब भी अमृत पिलाना।
Let me. वो पल अविनाशी हो
होते हैं वो पल अविनाशी होते हैं हर पल को सफल बना देंगे हर पल को सफल बना देंगे तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं या प्रभु संग संग बाबा यूं ही आ प्रभु संग संग बाबा इस दुनिया के सुख पाने क्या इस दुनिया के सुख पाने क्या लहराते रहे तेरी यादों में लहराते रहे तेरी यादों में उन यादों में खो जाएंगे उन यादों में खो जाएंगे तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद जीते हैं बाबा तेरी याद में जीते हैं बाबा तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं रहे याद सदा ही साथ तेरी रहे याद सदा ही साथ तेरी
अभी हम सभी प्यारे बाबा का वतन से आया हुआ संदेश सुनेंगे उसके बाद यहाँ सभी को अमृत मिलेगा तो अगर किसी को जरूरी कार्य नहीं है तो यहाँ बैठे रहेंगे शांतिपूर्वक
ओम शांति आज नए वर्ष और सतगुरुवार के निमित्त सब भाई बहनों की स्नेह भरी यादों के साथ जैसे मैं वतन में पहुंची बाबा बहुत व्यस्त दिखाई दे रहे थे बाबा के सामने कई प्रकार के कार्ड और शुभकामनाएं और बच्चों के मन के संकल्प के विशेष खिलौने सजे हुए और सेवा के प्लान के निमित्त कई तरह के डिजाइन दिखाई दे रहे थे बाबा उन सबको बहुत ध्यान से देख रहे थे कुछ सेकंड के बाद बाबा ने मेरी ओर देखा कहा आओ बच्ची मैंने कहा बाबा आज के दिन तो हर एक बच्चा यही कहता है कि मेरी याद बाबा को देना। बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा अमृत वेले से ही कुछ बच्चे तो स्वयं बाबा के पास वतन में पहुंचे और बाकी जो नहीं पहुंचे हैं आज के दिन बाबा ने उन सबको वतन में बुला करके और बच्चों को बहुत अच्छी तरह से भरपूर कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं देखती हूँ इतने बाबा के बच्चे और बाबा की दृष्टि से हर एक के पास लाइट के द्वारा बहुत से रतन पहुंच रहे थे। बाबा ने कहा बाबा ने बुलाया है बाबा रत्नागर रत्नों का सागर और नए वर्ष के लिए बाबा भी बच्चों को रत्नों से श्रृंगार कर रहे हैं। तो सभी के सभी बहुत सुंदर लाइट के रत्नों से चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। बाबा ने याद कराया कि बच्चों को बाबा हर रोज जो वरदान देते हैं वरदानों से सजाते हैं उन वरदानों से अनुभव भी करें और उन वरदानों के लाइट की किरणों से दूसरों को भी अनुभूति कराएं। तो बाबा का आज का रूप बड़ा स्नेही दिखाई दे रहा था। बाबा ने कहा कई बच्चे कह रहे हैं नए वर्ष की बधाई। बाबा ने कहा बाबा तो पहले से बच्चों को इन एडवांस नए युग के और नए युग में विश्व महाराजन विश्व महारानी बनने की बधाई सफलता के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे बाबा कह रहे थे हर एक ऊपर गोल्डन पुष्पों की वर्षा हो रही थी। फिर बाबा एक सेकंड बिल्कुल शांत हो गए और बाबा चारों तरफ से वही दृश्य देखने लगे जो बच्चों ने भेजा था। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे नए वर्ष में क्या करने जा रहे हैं और नए युग को जो कि समीप आ रहा है उसके लिए क्या प्लान किया है। तो बच्चे मुस्कुराते हैं बाबा अब तो जल्दी जाना है। तो बाबा ने कहा क्यों देर कर रहे हो। बाबा भी चाहते हैं कब तक बैठे रहेंगे और कब तक इंतजार करेंगे। तो जल्दी जाना है तो तैयारी करो। तो सारे मुस्कुरा भी रहे हैं। फिर बाबा ने कहा अच्छा अभी आज नए समय में नए वर्ष के लिए नई दुनिया तो बच्चों को लानी ही है उसके लिए बाबा आज बच्चों को एक गिफ्ट देते हैं। जैसे गिफ्ट देने लगे तो सबके सामने एक एंजल पहुंचता था और एंजल के हाथ में एक बहुत सुंदर चमकती हुई जैसे स्टिक के ऊपर त्रिमूर्ति तीन चीजें दिखाई दे रही थी। एक था ऊपर लाइट और वो लाइट दिखाई दे रही थी। तीन प्रकार की लाइट थी। जो टॉप पर लाइट थी उस पे लिखा हुआ था बिंदी डॉट। अच्छा जो साइड में लाइट थी उसमें लिखा हुआ था कर्म बंधन मुक्त कर्मों की चेकिंग। और तीसरी तरफ जो लाइट थी उसके ऊपर लिखा हुआ था संपन्न स्वरूप वरदानी स्वरूपा। तो ये जैसे बाबा ने दी और बच्चों के हाथ में गई। कभी कभी बच्चों के हाथ की जो ऊपर डॉट वाली थी वो गुम हो जाती थी या डल हो जाती थी। कभी कभी ये जो दूसरी थी लाइट जिसमें बंधन मुक्त लिखा हुआ था वो भी ऐसे चारों तरफ चक्कर की तरह घूमती थी, कभी लाइट ऊपर जा रही, कभी वो लाइट की उलझने दिखाई दे रही थी। और तीसरे स्वरूप जो था जिसमें वरदानी और संपन्न स्वरूप लिखा हुआ था वो उसके जैसे लाइट की किरणें दूर तक पहुंच रही थी। बाबा ने कहा कि बाप ने पहले से कई बार इशारा दिया है कि समय और प्रकृति एक तरफ अपना नजारा दिखा रहे हैं, लेकिन समय और प्रकृति और ये बच्चों को संपन्न बनाने में मदद कर रहे हैं, इसलिए बच्चों को हर कर्म करते समय जो भी बातें पुरानी हो गई हैं उसको बिंदी डॉट और उसको क्लीन कर दें और क्लियर हो जाए। नहीं तो बाबा ने कहा कई बच्चे अभी तक पुरानी बातों के चिंतन में जाते हैं, तो इसलिए जो वरदान बाबा ने दिए हैं उन वरदानों का स्वरूप नहीं बन पाते। फिर दूसरी बात बाबा ने कहा अभी नए वर्ष नए युग के लिए बच्चों को अपने हर संकल्प की चेकिंग और उसको चेंज करना है और थॉट को डॉट देती जाए। फिर बाबा ने कहा चेकिंग के साथ साथ अभी कई बच्चे ऐसे भी हैं कोई ना कोई प्रकार के बंधन जोड़ते रहते हैं, अभी बंधनों से मुक्त होने का समय है, नहीं तो ये सूक्ष्म बंधन जो है वो ऐसे मजबूत होते हैं, बड़े तो सहज तोड़ लेते हैं, सूक्ष्म बंधन इतने मजबूत हैं जो आत्मा को अनुभूति करने नहीं देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा हर संकल्प की चेकिंग और कर्मों से अपने कर्म बंधन से अपने को हल्का और मुक्त करते जाएं। फिर बाबा ने कहा नए युग के लिए नए वर्ष के लिए बाबा बच्चों को विशेष वरदानों से भरपूर कर रहे हैं, सदा अपना संपन्न स्वरूप सामने रखें और वरदानों से बाप ने जो श्रृंगार किया है वो श्रृंगारी स्वरूप भी हर समय अनुभव करें। और अभी समय है कि फरिश्ता रूप बनकर के विश्व की आत्माओं को परमात्मा बाप के पास नजदीक लाना। और अभी बच्चों का विशेष कर्तव्य रहा है कि भक्तों की पुकार सुन उन्हें भी भावना का फल देना है। जैसे ये कार्य प्रत्यक्षता का होगा तो जल्दी ही नए युग में जा सकेंगे। फिर तो बाबा सबके ऊपर दृष्टि के द्वारा लाइट के ऐसे वरदान और रत्न पहुंच रहे थे, बच्चे बहुत सजे हुए दिखाई दे रहे थे और बाबा भी खुश हो रहे थे। बाबा ने कहा समय तीव्र गति से है, बच्चों को भी अपने संपन्न स्वरूप को तीव्रता से बनाना है। फिर मैंने बाबा को भोग स्वीकार कराया, बाबा ने भी सबको भोग स्वीकार कराते हुए कहा बच्चे सफलता तो है ही लेकिन थोड़ा सा चेकिंग और अटेंशन देना है, इसलिए सदा सफल रहे और बाप को प्रत्यक्ष करते रहे। फिर बाबा को जिनके निमित्त भोग थे याद प्यार दिया, बाबा ने उनको भी इमर्ज करते हुए याद प्यार दिया। ओम श्री।